Hey guys, welcome to another episode of the Four Stump Podcast. This is your host Ayush and Manik joining you again and taking the next step in the discussion of the IPL auction 2023.
Hey guys, hi everyone.
Hey, और आज हम बात करने वाले दो नई टीमों की IPL में जो आई हैं. पिछले साल वो लोग आई थी और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया दोनों टीमों ने. गुजरात टाइटन्स ने तो पहले जीत ही लिया पूरा का पूरा टूर्नामेंट, इवन दो कई लोग उनकी टीम में कमियां निकाल रहे थे. और दूसरी एंड पे लखनऊ की टीम है, लखनऊ सुपर जायंट्स, पुणे सुपर जायंट्स से लखनऊ सुपर जायंट्स. और उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया केएल राहुल के अंडर, टॉप फोर में क्वालिफाई करे. कुडंट मेक इट टू द फाइनल एंड कुडंट मेक इट टू द कुडंट मेक इट कुडंट बिकम अ विनर, पर काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम थी. इनफैक्ट मेरे हिसाब से लास्ट ईयर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी उनकी ऑन पेपर. तो आज हम उन दोनों टीमों को डिस्कस करेंगे और IPL ऑक्शन 2023 का डिस्कशन का रिव्यू का चैप्टर खत्म करेंगे आज, राइट?
हाँ बिल्कुल. दोनों नई टीम जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, दोनों ही फॉर्मिडेबल साइड हैं. दोनों की परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही थी IPL 2022 में, तो उस लिहाज से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था कि वो ऑक्शन में क्या करते हैं. As we're starting with Gujarat Titans, and as Ayush brings up the player they bought in the IPL auction, couple of things that जो मैं बोलना चाहूँगा about Gujarat Titans is कि वो एक 19.25 करोड़ के पर्स के साथ एंटर किए थे ऑक्शन में. उन्होंने कुछ प्लेयर्स को रिलीज किया था या फिर ट्रेड इन किया था, ट्रेड आउट किया था रेदर. स्पेशली उन्होंने आपके फर्ग्यूसन को जाने दिए थे, टू KKR एंड गुरबाज, रहमतुल्ला गुरबाज को भी जाने दिया था टू KKR. तो दे वर लुकिंग फॉर अ फॉर्मिडेबल साइड, मतलब दे वर लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट फॉर फर्ग्यूसन. तो वी विल सी, वी विल टॉक अबाउट कि उन्होंने कौन कौन सी शॉपिंग करी. एंड एज वी लुक एट दिस लिस्ट, they bought Kane Williamson, which I think went very cheap. इनको 2 करोड़ के प्राइस पे Kane Williamson मिल गया. Odin Smith, जिनको पंजाब ने रिलीज किया था, they got Odin Smith. KS भरत के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, but let's just complete the list first. KS भरत इनको 1.2 CR में मिला है. Shivam Mavi, which I think has performed extremely well. आज जैसे हम बात कर रहे हैं तो इंडिया played their first T20 match against Sri Lanka today, and Shivam Mavi, according to me, was the man of the match. Though the man of the match went to Deepak Hooda for his innings, but Shivam Mavi was outstanding in his bowling. So good signs for Gujarat Titans, especially considering ki udhar bhi Hardik Pandya captain hone wale. They also got Joshua Little for I think 4 odd CR, 4.4 CR. Shivam Mavi ko 6 crore mein liya unhone. And they also got Mohit Sharma for his base price and Urvil Patel ko inhone liya hai. To jitne purse ke sath ye enter kiye the 19.2 odd crore ke sath, I think they have done a good job. Kyunki agar aap inki last year ki team dekho to thodi si batting short thi. Halanki we found that David Miller aur Hardik Pandya ka to extremely great season tha. And even with their top order a bit struggling, कि भाई कभी शुभमन गिल चल रहे थे, कभी साहा चल रहे थे, कभी नहीं चल रहे थे, वो नीचे वाले जो batting order थे, वो more or less compensate कर देते हैं. And they had a very great bowling attack as well, fast bowling attack खासकर. तो I think उन gaps को इन्होंने fill करने की कोशिश की है, which is great. शिवम मावी के रूप में इनको एक अच्छा Indian pace attack मिला है. KS भरत की मैं इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि इनके पास कीपर की ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी. इफ यू लुक एट देयर कीपिंग लाइन, उनके पास साहा है, उनके पास मैथ्यू वेड है, तो और वो मैच खेल रहे हैं. पर मे बी द थॉट प्रोसेस इज की साहा, बिकॉज ही इज गेटिंग ओल्ड, एक उसकी रिप्लेसमेंट है. लेकिन व्हाट इज सरप्राइजिंग इज की काफी KS भरत जो कि 1.2 CR में बिक गए, बीइंग एन इंडियन विकेट कीपर, और ऐसी कोई खराब परफॉर्मेंसेस की नहीं आरसीबी के साथ उन्होंने. मैं सरप्राइज हूँ कि यार टीम लाइक, हम बात कर रहे थे उस दिन आपकी केकेआर की या दिल्ली की, जिन लोगों को विकेट कीपर की ज्यादा जरूरत है। अब हम दिल्ली की उस दिन बात कर रहे थे कि ऋषभ पंत अगर नहीं खेलते तो हु विल बी, और ये लोग ऐसी टीम्स हैं केकेआर और डीसी जिनके पास इतने पैसे थे बचे हुए, शायद केकेआर के पास तो उतना पैसा नहीं था, पर डीसी के पास फिर भी ठीक ठाक पैसे थे टू गो फॉर केएस भरत, जो उन्होंने नहीं किया। तो आई फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिट स्ट्रेंज कि भाई एक टीम है जिनके पास कीपर्स काफी सारे हो जाते हैं और दूसरी टीम है जो कोशिश भी नहीं कर रही है, एंड देन सो केएस भरत की खैर आई थिंक दैट केएस भरत थोड़े महंगे जाने चाहिए थे, बट वॉट एवर इट इज, अभी वो गुजरात टाइटन्स में दिख सकते हैं आपको खेलते हुए, विच इज रियली गुड।
मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ आई थिंक इसमें सही बात है। जैसे एक पॉइंट पे आई थिंक लास्ट ईयर क्या हुआ था गुजरात के साथ कि पहले इन लोग ने वेट को खिलाया एंड ही वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल शुरू शुरू के मैचेस में, फिर उसकी जगह साहा को लेके आया, साहा के लिए इस टाइम पे आईपीएल T20 में जगह टॉप ऑर्डर में ओपनिंग पे बनती है नॉर्मली, क्या कहते हैं सभी लोग जब भी खिलाते हैं उनको वही खिलाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब इनका ऑर्डर हिलता है, और फिर साहा को रिप्लेस करके वापस वो वेट को लेके आए क्योंकि साहब भी नहीं चले थे। तो अभी क्या है कि केएस भरत को लाने से वो ऐसा है कि लाइक वो चार पांच नंबर पे जहाँ पर पहले ये आपके साई किशोर या फिर क्या कहते हैं दूसरे कोई और बल्लेबाज खेलते थे और जो कि इतना हिट नहीं कर पाते, उसकी जगह पे केएस भरत खेल सकते हैं पांच छह नंबर पे लोअर ऑर्डर में, और कीपिंग का ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो इस तरह से मुझे लगता है वो फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास आ जाती है, प्लस कभी इनको लगता है कि ओपनिंग में काम नहीं बन रहा तो शुभमन गिल के साथ केन विलियम्स से मुकुंद कर सकते हैं, तो वेट को बाहर बैठा सकते हैं लोग। आई थिंक वो एक इनको थोड़ी सी वो मिल गई क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फिर लॉकी फर्ग्यूसन को रिलीज किया था तो उसकी जगह पे ऑडियन स्मिथ, शिवम मावी और जोशुआ लिटिल लिए हैं बेसिकली। तो जोशुआ लिटिल तो आई थिंक 1-to-1 रिप्लेसमेंट है, फास्ट बॉलर है आयरलैंड का, फर्स्ट आयरलैंड प्लेयर है इस ऑक्शन जो कि इस ऑक्शन में बिका। और ऑडियन स्मिथ थोड़े से बैटिंग हैवी ऑलराउंडर बोलूंगा मैं, मतलब कर लेते हैं बॉलिंग वो, पर उनकी बॉलिंग काफी एक्सपेंसिव रहती है। पर काफी एक मैच तो स्पेसिफिकली याद है मुझको लास्ट आईपीएल में उन्होंने जिताया था आरसीबी के खिलाफ सिंगल हैंडेडली, एक सिराज के ओवर में 17-18 रन मार के, लगातार रन मार के। तो ही हैज दैट कैपेबिलिटी जैसे तेवाटिया टाइप का कि आखिरी एक ओवर में आके फर्स्ट बॉल से हिटिंग करके आप वो रन बना सकते हैं, तो उस तरह का अगर इनको चाहिए लोअर ऑर्डर तो ही कैन दे कैन मेक इट वर्क। तो उस हिसाब से मुझको टीम मतलब अगेन क्योंकि विनिंग टीम थी तो ज्यादा प्लेयर रिलीज नहीं करे, ज्यादा प्लेयर ट्रेड नहीं करे, ज्यादा प्लेयर खरीदे भी नहीं है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन को आप बहुत ज्यादा चेंज करना नहीं चाहते। पर आई थिंक इस बार जो इनका गैप था कि लोअर ऑर्डर में थोड़ी बैटिंग नहीं है वो भी अब हमको पूरी होती हुई दिखेगी, कि जैसे चार पांच छह सात में बैट्समैन नहीं है वो भी हमको पूरे हुए होते हुए दिखेंगे इस बार आई थिंक, जैसे और स्ट्रॉन्ग लगेगी टीम बेसिकली।
हाँ लेकिन अगर हम इसकी प्लेइंग 11 देखें या मैं जो भी इसकी प्लेइंग 11 लिख रहा था ऑनेस्टली, तो एक चीज जो मुझे थोड़ी सी लगी और शायद मैं मतलब ये मेरा सोचने का पहलू है वो ये कि इनके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस काफी सारे हैं, तो आई थिंक दे माइट गो विद विलियमसन आल्सो, अगर ये विलियमसन को और वेड को दोनों को खिला पाते हैं देन इट लुक्स लाइक अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड अकॉर्डिंग टू मी, कि फिर आपकी बैटिंग ऐसी हो जाएगी कि शुभमन गिल, वेड, विलियमसन, पांड्या, डेविड मिलर। और जब मैं इस बैटिंग ऑर्डर को देखता हूँ अलोंग विद टेवटिया इफ एट ऑल नीडेड और फिर राशिद खान जो कि अच्छी खासे छक्के मार सकते हैं, तो ये मुझे काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप लगती है। बॉलिंग में एज आई एम सेइंग कि भाई टेवटिया भी बॉलिंग करता है, हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग करता है, तो आपके पास ऑलरेडी अच्छे सिक्स बॉलिंग ऑप्शन है। अब तो हार्दिक पांड्या लगातार 3-4 ओवर डाल रहे हैं और आज तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने पावर प्ले में। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि वो आपके जैसे आपने अलजारी जोसेफ रखा है तो अलजारी जोसेफ की जगह दे कैन फिट इन शिवम मावी फॉर एग्जांपल, क्योंकि शिवम मावी पे पैसे लगाए हैं तो इनके पास यश दयाल, शिवम मावी और मोहम्मद शमी जैसे अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। साई किशोर को इन्होंने कंटिन्यू रखा है क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने काफी मैचेस किए और उसने अच्छे परफॉर्मेंसेस की हैं, मैं उसके काफी सारे मैचेस अभी रिकॉल कर रहा था, तो इकोनॉमी भी काफी जगह अच्छी थी, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, तो साई किशोर के साथ एंड राशिद खान के साथ दे हैव अ गुड मिक्स एंड मैच ऑफ ऑलराउंडर्स प्लस फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस एंड स्पिनिंग ऑप्शंस। तो मुझे लगता है कि दे कैन ऐड केन विलियमसन इंस्टेड ऑफ अलजारी जोसेफ and that could make them a very formidable side, nahi to phir wahi hai ki Sai Sudarshan wala jo spot hai wo thoda sa dicey
hoga, isme mujhe maybe Sai Sudarshan wala spot ko wo Kane Williams, because Sai Sudarshan bhi thoda slow type ka player hi hai, like you know like wo 120 strike rate wala, is not like the bilkul aake marne wala player, to uski jagah pe jaise jo ab aap Kane Williams ko khilane ki koshish kar rahe ho uski jagah pe ye log उसको भी खिला सकते हैं, क्या कहते हैं, ओडिन स्मिथ को, तो वो आपको हल्का सा बॉलिंग ऑप्शन भी देगा और थोड़ा नीचे आ जाएगा राशिद खान के नीचे, तो हिल भी एक क्लोजिंग ऑप्शन उस जगह पे भी, अगर आपको अल्जारी जोस को नहीं खिलाना है, बिकॉज शिवम अभी आपके फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन पूरे करता है अगर आप वहां पर
बिल्कुल
उसको खिलाते हो तो। और मतलब वही, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है इस टीम में काफी, कि अगर आप समझ लो वेट नहीं चल रहे है ना, तो वेट की जगह विलियमसन लाके या सुदर्शन की जगह भरत ला सकते हो, भरत को 6 नंबर पे खिला सकते हो और विलियमसन से ओपन करा सकते हो, है ना, तो ज्यादा ऑर्डर बदलेगा नहीं, और मतलब यू स्टिल हैव द ऑप्शन टू रिप्लेस विद द कीपर। साहा है ही नहीं, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन तो वही रहेगा, मैथ्यू वेट की जगह साहा ही लेके आएंगे पहले वो लोग इंस्टेड ऑफ, फिर अगेन दैट ओपन सब कॉर्नर स्लॉट, आप कहीं भी एक और खिला सकते हो सुदर्शन की जगह पे या फिर साई किशोर की जगह पे, तो वही अच्छी टीम है इस बार आई थिंक विजय। और मैं बताऊं मतलब हम लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं इंडियन कम्युनिटी में, पर विजय शंकर है इनकी टीम में, ठीक है,
नहीं
वो भी एक
एब्सोल्युटली,
अच्छा
और बिल्कुल
बॉलिंग
बिल्कुल,
ऑलराउंडर है।
मैं देख रहा था उसकी टीम, इनफैक्ट
हाँ
विजय शंकर के साथ मैं देख रहा था, इनके पास अच्छे ऑप्शंस है विजय शंकर को अगर ये खिलाते
हाँ
हैं। जयंत यादव भी इनके पास है, विजय शंकर भी इनके पास है, दोज आर यूटिलिटी प्लेयर्स और वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर वो यूज कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इनकी कमी ये लग रही है, अगर मैं ये टीम अभी भी देखूँ या सुदर्शन की जगह मैं विलियमसन भी रिप्लेस करता हूँ, तो आई एम सीइंग राशिद खान एट नंबर 7। और अगर आप बाकी टीम के नंबर 7 बैट्समैन देखो कंपेयर टू राशिद खान, तो यू विल फाइंड कि मतलब नो नथिंग अगेंस्ट राशिद खान, लेकिन ही इज मोर ऑफ अ बॉलर देन एन ऑलराउंडर, राइट? आप राशिद खान के ऊपर एक ऑलराउंडर टैग नहीं लगाओगे। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का नंबर 7 हमारे अकॉर्डिंग इज जेसन होल्डर, ठीक है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली का नंबर 7 इज अक्षर पटेल। सीएसके की बात करते हैं, सीएसके में तो आपका नंबर 7 पे शिवम
नौ
दुबे आ रहा है, ठीक
सही
है,
बात
उनकी तो बैटिंग ही बहुत बढ़िया है। आरसीबी में आपके शहबाज अहमद है, केकेआर में आपके शार्दुल ठाकुर है नंबर 7 पे, एसआरएच की अगर आप बात करो तो अब्दुल समद को हम सोच रहे हैं शायद वो नंबर 7 पर हो या उसके जैसा हो, और उसके बाद भी वॉशिंगटन सुंदर टाइप के बैट्समैन है। एमआई में भी टिम डेविड को हम नंबर 7 पे बात कर रहे थे। तो अगर इन सारे नंबर 7 की तुलना में आप गुजरात टाइटन्स का नंबर 7 बैट्समैन देखो जो राशिद खान के रूप में है, तो इनकी एक बैट्समैन शॉर्ट वाली हालत तो लग रही है कि ये थोड़ी सी इनकी बैटिंग शॉर्ट है। और पिछली बार की तरह यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हार्दिक पांड्या मिलर विल हैव अ फिनोमिनल ईयर। तो इसीलिए मैंने बोला कि विलियमसन का होना नंबर 3 पर काफी जरूरी है, लेकिन क्या ये टीम बड़े स्कोर बना पाएगी? पॉसिबल है कि शुभमन गिल और विलियमसन अगर दोनों खेलें तो टीम स्टार्टिंग में काफी ज्यादा ओवर खा जाए, हालांकि वो दोनों टिक्के खेल सकते हैं, बाद में हार्दिक पांड्या मिलर का फिनिशर का रूप दे सकते हैं, लेकिन ये मुझे टीम 200 बनाती हुई वाली टीम कम दिख रही है इस बार। हाँ, इसमें इतनी फायर पावर जरूर दिख रही है कि ये 160 के टोटल को भी डिफेंड कर सकती है।
मेरा इसमें एक पॉइंट ये कि लाइक इस बार आईपीएल होम अवे फॉर्मेट में होगा, जो कि क्लासिकल आईपीएल फॉर्मेट है, तो इसमें क्या ना अब टीमों को अलग अलग कंडीशंस चैलेंज मिलेगा उनको। पिछली बार क्या था कि हम लोग कम फील्ड स्टेडियम में खेल रहे थे, कई सारे मैचेस लाइन से एक ही स्टेडियम में हो रहे थे एक टीम के, तो दे कुड लाइन अप, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अगर आपने एक मैच में अच्छा मारा ना उस पिच पे, तो बहुत चेंज नहीं होगा अगले मैच में उस पिच के अंदर, तो यू यूज टू द बाउंस, यू आर यूज टू द चैलेंज, तो आप मारते चले जाते हो। जैसे अगर मिलर फॉर्म में आया तो मिलर मार रहा है लगातार बेसिकली, पर अब क्या होगा जैसे मिलर जाएगा वानखेड़े से बाहर, कभी मतलब अहमदाबाद में कुछ मैचेस होंगे खेलेंगे वो लोग, कुछ मैचेस कोलकाता में एडन गार्डन में खेलेंगे, कुछ चेपॉक में खेलेंगे, कुछ और चिन्ना स्वामी में खेलेंगे, अलग फील्ड के अलग चैलेंजेस होंगे, जहाँ पर बॉल रुकेगी रुक के आएगी, है ना, थोड़ा सा और खड्डा होगा, मतलब फील्ड थोड़ी बड़ी होगी, तो इस बार ज्यादा चैलेंजेस होंगे इन टीम को झेलने के लिए। पर उसके लिए भी मुझे लगता है आई स्टिल थिंक गुजरात इज वेरी गुड टीम, बिकॉज इनमें ऑप्शन है बैटिंग बढ़ाने का, जैसे मैं
हाँ
कह रहा हूँ वही है
बिल्कुल,
कि मतलब
डेफिनेटली,
आठ नौ पे भी ये लोग डाल सकते हैं बैटिंग ऑलराउंडर टाइप बैट्समैन।
क्योंकि हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हम इसीलिए कह रहे हैं कि भाई अगर अभी आप इसकी बॉलिंग में सिर्फ गिनती करो तो मोहम्मद शमी, दयाल, जोसेफ, किशोर, आपके राशिद खान, टेवटिया,
हार्दिक
हार्दिक
पांड्या
पांड्या, नंबर 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं इनके पास, एज गुड एज 7 बॉलिंग ऑप्शंस। 7 बॉलिंग ऑप्शन नहीं चाहिए होते, 6 से काफी है, 6 बॉलिंग ऑप्शंस इज एज गुड। तो ये एक बॉलर जैसे साई किशोर फॉर एग्जांपल ना खिलाए, क्योंकि तेवतिया कैन गिव यू सम स्पिनिंग ऑप्शन, और राशिद खान तो कराएगा ही, ठीक है, और ये उसकी जगह पे एक केएस भरत या सुदर्शन को ही डालने की सोच सकते हैं, या विजय शंकर हमने बात करी उसको भी कोशिश कर सकते हैं डालने की, बट वो किस नंबर पे खिलाना चाहेंगे वो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप डेविड मिलर को नीचे इतना पुश नहीं करना चाहोगे, आप हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पे शायद खिलाना चाहोगे।
पांडे
हार्दिक
का फायदा
पांड्या
तो
की
अभी है, मतलब अगर आप टॉप, अगर आपको टॉप फोर में बॉलिंग ऑप्शन मिल रहा है, तो वही फायदा है ना हार्दिक पांड्या का, क्योंकि वो टॉप फोर में भी खेलता है और फिर बॉलिंग भी कराता है,
हाँ
विच इज लाइक समथिंग डिफरेंट ऐसा
करेक्ट,
बाकी।
नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ, पर एक एक मुझे लगता है कि इन्हें कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा बैट्समैन को कहीं ना कहीं से लाने की कोशिश करनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई फील।
हाँ
ये
आई एग्री,
एक
पर आई थिंक ये लोग खेलेंगे ऐसे ही, मुझे लगता है यही इनकी शुरुआत की टीम होगी। लेकिन इसमें मे बी जोसेफ की जगह पे मावी हो और सुदर्शन की जगह पे केन विलियमसन हो, ये इस टीम में। पर आई थिंक ये खेलेंगे ऐसे की राशिद एट सेवन स्टार्ट ऐसे करेंगे, और फिर जब हारेंगे ना तब, और 2-3 मैच हारेंगे लगातार, तब मे बी दे विल थिंक ऑफ कि हमको बैटिंग एक्सटेंड करनी चाहिए।
नहीं,
दैट इज व्हाट
वो तो
मैं
बिल्कुल वो तो होगा इनके साथ इस साल, हर साल पिछले साल की तरह ये रन फॉर मनी नहीं देंगे कि बिल्कुल ही ये ऐसे खेल गए कि इनको कोई बीट ही नहीं कर सकता। आई एम प्रिटी श्योर कि दिस सीजन विल बी मोर कॉम्पिटिटिव एंड यू वोंट फाइंड अ टीम जस्ट डूइंग रियली वेल। और अगर ऐसी कोई टीम होगी भी तो आई एम प्रिटी श्योर गुजरात टाइटंस इस बार नहीं होगी। आई डू एक्सपेक्ट लिटिल लेस परफॉर्मेंसेस, दिस परफॉर्मेंसेस फ्रॉम ईच ऑफ दीज प्लेयर्स। ये नहीं कि कोई कमी है प्लेयर्स में, सारे फॉर्म में है, अच्छा खेलते हैं, लेकिन हर साल उतना अच्छा नहीं जाता टीम्स का। ये सीजन काफी इंटरेस्टिंग होगा गुजरात टाइटंस के लिए। टीम अभी भी बहुत ही अच्छी साइड है, आई डू सी देम प्लेइंग इन द नॉकआउट गेम्स, लेकिन थोड़ी सी बैटिंग शॉर्ट है जैसा मैंने बोला, तो टीम्स विल ट्राई टू ऊपर से विकेट लेकर, अगर टीम्स पहले 2-3 विकेट इनके जल्दी आउट कर देती है तो ये टीम रियली प्रेशर में आ सकती है।
हाँ, तो दूसरी टीम ऑन दी अदर हैंड इज लखनऊ सुपर सुपर जायंट्स। इस टीम ने भी रिलेटिवली काफी अच्छा खेला था, टॉप 4 में पहुंची थी पिछली बार। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर इट हैड द बेस्ट टीम बिकॉज इनके पास ऑलराउंडर बहुत सारे थे, तो ऐसा था कि 5 से लेके 8 तक बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन पूरी भरी हुई है। पर फिर भी इन लोगों ने काफी प्लेयर को रिलीज किया इस बार, और काफी शॉपिंग भी करी, लाइक जस्ट गोइंग थ्रू द लिस्ट, एक बार लिस्ट के थ्रू जाते क्या क्या खरीदे, तो निकलस पोरन वो काफी एक्सपेंसिव जो कि रहे इस बार। जयदेव उनादकट, ये तो हमेशा जब भी बिडिंग में आते हैं, इन पे काफी अच्छी बिडिंग होती है और काफी पैसा लेके जाते हैं ये। यश ठाकुर, डेनियल सैम्स, रोमारियो शेफर्ड, अमित मिश्रा, अच्छी एक इंटरेस्टिंग बेड है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, प्रेरक मनकड़, स्वप्निल सिंह, नवीन उल हक और युधवीर चरक। तो ये काफी, मतलब आप देख सकते हो 3, 6, 9, 10 प्लेयर खरीदे इन लोगों ने इस ऑक्शन में, राइट। जेसन होल्डर को निकाला अपनी टीम से इन लोगों ने, तो दैट आई थिंक वाज अ बिग गिव अवे। इवन लुइस नहीं है इस बार इनकी टीम में, जो कि मुझको लगता है अगेन इज अ बिग लॉस, क्योंकि इवन लुइस ने इनको डायरेक्टली 1-2 मैच जिताए थे लास्ट आईपीएल में, मतलब सिंगल हैंडेडली 50 रन बनाए उनके साथ, तो मैच जिताए उन लोगों ने उन्होंने तो मुझको लगा ही वॉज अ लॉस। और मैं एक्चुअली उस टाइम में बात करूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम रही उनकी हमेशा, लखनऊ की प्रॉब्लम वाज नॉट देयर स्क्वाड, इट वाज देयर टीम सिलेक्शन, जो कि वो टीम मुझे लगता नहीं है कभी सही टीम खिला पाए क्रिटिकल मोमेंट पे, है ना।
हाँ, मैं अग्री करता हूँ। जब उन्होंने बदोनी का, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऑप्शन लेते हो, तो नथिंग अगेंस्ट हिम, अगेन अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप उसको कहाँ, मतलब जिस तरह की टीम आप लेकर चल रहे हो उस टीम में के में उसका कहीं रोल फिट नहीं हो रहा है, या जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहा था, क्योंकि उसने एक दो मैचेस में ऐसा परफॉर्म कर दिया कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से रन मार दिए, तो लोगों को लगा कि ये कर सकता है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर नहीं कि कंसिस्टेंटली हर मैच में आपको 180-200 बना के देगा। तो जब उसको नीचे आप बैटिंग करा रहे थे तो दैट आई थिंक वॉज अ स्ट्रगल, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास जब राहुल और क्यूडीके जैसे ओपनर हैं और फिर आपके पास अच्छे विस्फोटक बैट्समैन है, तो आप फिर उनको ऊपर ही खिलाना चाहोगे जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इसलिए वो अभी भी, अगर हम टीम लाइनअप की बात करें, आई डोंट नो अपने जो टीम है उसमें आपके में बदोनी फिट होता है नहीं, बट अगर वो बदोनी
मैंने तो
जो,
करा है बिकॉज लास्ट ईयर भी खेला था वो काफी, राइट।
हाँ,
तो
तो फिर वो बदोनी की जो जगह है वो थोड़ी सी डाइस हो जाती है। अभी आप टीम में देखो कि केएल राहुल हो गया, आपके पास क्विंटन डिकॉक हो गया, निकलस पूरन हो गया, हुडा हो गया, ऐसी फायर पावर बैटिंग के बाद आप सोचोगे कि स्टोइनिस विल बी एन ऑटोमेटिक चॉइस, और स्टोइनिस के बाद कृणाल पांड्या शुड बैट, तो वो बदोनी की जगह तो मुझे
करेक्ट।
दिख ही नहीं रही है। मतलब ही इज लाइक, अगर खिला भी रहे तो उसको नंबर 7-8 पे पुश कर देंगे, हर बारी पुश कर देंगे, जस्ट बिकॉज यू वुड लाइक टू कंटिन्यू द मोमेंटम दैट दीज पीपल वुड हैव गिवन टू यू। अनलेस ऐसा हो जाए कि ऊपर के 3 विकेट एकदम निकल जाए और फिर कोई सपोर्टिंग हैंड खेलने आए तो
फिर वही
बदोनी को आप
बदोनी
ले
और हुडा
सकते
वाला, हाँ, जो कि हुडा और बदोनी ने काफी किया पिछली बार, लाइक आई थिंक लखनऊ के पहले शुरुआत के 3-4 मैच में तो यही हो रहा था कि लाइक जैसे दे वर लूजिंग टॉप 3, अर्ली विकेट जा रहे थे उनके, और बदोनी और हुडा को दे हैड टू प्ले लाइक अ रेस्क्यू एक्ट काफी बार
हो।
बस। पर इस बार जैसे स्टोनिस फिट रहेगा प्रॉब्ली शुरुआत से, तो डू यू थिंक ओपन करवाने का सही रहेगा क्यूडीके की जगह, मे बी निकलस पुरन को 4 पे ले आए, क्यूडीके की जगह स्टोनिस को खिला दें, और फिर बर्दानी नीचे। हाँ
ओपनिंग पे स्टोइनिस करा दें?
जैसे स्टार्स करती है, मेलबर्न
नहीं नहीं
स्टार्स हैज
नहीं
डन
नहीं नहीं वो
मुस्टोविनिस
नहीं होगा।
सक्सेसफुल भी रहा है वहां पर।
आई नो कि यू वांट दैट टू हैपन, लेकिन अब वो मेलबर्न स्टार्स भी नहीं करते हैं, पिछले 3 साल से उन्होंने नहीं किया ऐसा, तो अब मुझे नहीं लगता कि स्टोइनिस को दे विल पुश। व्हाट आई वांट टू सी इज कि ये मनन वोरा के साथ ओपनिंग करें और केएल
करें।
राहुल वन डाउन चला जाए, तो मुझे बदोनी की जगह हटती हुई और ये टीम काफी फॉर्मिडेबल दिखती है उस केस में। क्योंकि फिर अगर आप देखो तो मनन वोरा और क्यूडी के ओपन करेंगे और फिर आपके नंबर 3 से केएल राहुल, नंबर 4 पे निकलस पूरन, नंबर 5 पे हुडा, नंबर 6 पे स्टोइनिस, नंबर 7 पे क्रुणाल पांड्या, ये टीम लगती है मुझे ज्यादा ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा अच्छी, फॉर्मिडेबल। क्योंकि वो बदोनी की पोजीशन हट गई है और आप देखो कि एक एक बैट्समैन नीचे होता चला गया और सब अपनी जगह फिट हो गए। फिर तो अगर दे कैन डू इट बिकॉज दे हैव अ ओपनर लाइक मनन वोरा, मुझे वो ऑप्शन ज्यादा अपीलिंग या बेटर लगता है
और ये तीन
रदर
कीपर
देन
क्यों हैं,
हैविंग अ बदोनी।
इनके बारे में क्या कहना है आपको?
ये तो काफी टीम लोगों के पास है। अब सारे जो कीपर हैं आज की तारीख में वो बैट्समैन है, तो आई डोंट सी देम एज कीपिंग। आई डू सी सम ऑफ देम एज प्योर बैट्समैन, जैसे कि केएल राहुल तो मजबूरी वाले कीपर हैं। ही इज ओके काइंड ऑफ अ कीपर। सो अगर वो क्यूडीके और केएल राहुल है, तो आई आई थिंक क्यूडीके शुड डू द कीपिंग। सेम गोज विद निकोलस पूरन। निकोलस पूरन इज अ फिनोमिनल आउटफील्डर, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हैविंग दैट। दो तीन चीजें जो मैं पहले बात करनी रह गई वो ये कि ये 19.80 के पर्स के साथ उतरे थे, 19.80 करोड़ के साथ। शॉपिंग इन्होंने जो करी है उसमें, बिफोर वी से एनीथिंग, इन्होंने मतलब हमने शॉपिंग जो करी है निकोलस पूरन पे ही सारे पैसे लगा दिए मोस्टली, जो हम बात कर चुके हैं। जो थोड़े बहुत पैसे थे इनके पास उन्होंने इन्होंने सब काफी सारे बेस प्राइसेस पे करे हैं। जो स्मार्ट बाइज हम बात करते हैं उसमें रोमेरो शॉपर्ड मेरे को काफी अच्छी बाय लगी इनके 50 लाख में, क्योंकि काफी यूटिलिटी प्लेयर है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, तगड़े प्लेयर है, छक्के वक्के भी एंड में आके मार सकते हैं। डैनियल सैम्स को काफी अंडररेटेड ऑलराउंडर माना जाता है, अकॉर्डिंग टू मी इज अ फिनोमिनल प्लेयर, तो 75 लाख में उनको वो मिल गया, वो काफी अच्छी थी। जयदेव उनादकट के रूप में इनके पास एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, क्योंकि मोहसिन खान के बारे में पढ़ रहा था, उसने कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आईपीएल के बाद से नहीं खेली है और वो उसकी रिप्लेसमेंट हो सकता है, बिकॉज अभी जयदेव उनादकट का टेस्ट मैच खेला है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। तो इस बेसिस पे मतलब रिप्लेसमेंट है इनके पास, बॉलिंग ऑप्शंस है इनके पास। इनके पास मार्क वुड जैसा अच्छा बॉलर है, इन्होंने अमित मिश्रा, हम बात करने वाले थे कि अमित मिश्रा खरीदा है, इनके पास के एस गौतम है इनके पास, तो अच्छे मिक्स ऑफ स्पिनर्स भी हैं इनके पास। दे ट्राइड फॉर करण स्टोक्स एंड जोशुआ लिटिल, पर उनको मिल नहीं पाया, तो ये भी बताना पड़ेगा। सैम करन के लिए इन्होंने बोली लगाई थी, इन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि पैसे की कमी थी। स्टोक्स के लिए ऑल्सो दे ट्राइड हार्ड बट नहीं मिल पाया, और जोशुआ लिटिल के लिए भी इन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की बट शायद उस टाइम पे इतना पर्स बचा नहीं था, क्योंकि तब तक ये
पर
निकोलस
तो
पूरन
निकोलस
का
पूरन पे इतनी बेटिंग करने का क्या मतलब था? जो मतलब डू यू सी कि क्या उनको जरूरत थी, मतलब डू दे प्लान टू रिप्लेस क्यूडे के विद निकोलस पूरन, क्या सोच के आए थे वो लोग?
आई थिंक इनका मेन ऑप्शन यही था कि दे वांटेड समवन टू बैट एट नंबर 3 मेरे ख्याल से। तो नंबर 3 एक ऑप्शन जो मैं सोच रहा था कि ये पूरा करना चाह रहे थे। इनके पास वो बदोनी वाली जो प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए ये निकोलस पूरन को लाए, तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि शायद इस टाइम पे हम बदोनी की वो प्रॉब्लम, वो स्ट्रगल उनके साथ दिखी कि एकदम से आपके पास केएल राहुल और क्यूडी के आउट हो जाते हैं, तो इनके पास वो फायर पावर नहीं थी। स्टोइनिस को आप एकदम से नंबर 3 या 4 पे नहीं भेजोगे, हुडा को भी आप 3 या 4 पे ट्राई कर रहे थे, लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग रॉन्ग फॉर देम,
पर वही
स्टिल
बात है
दे
ना,
वर एबल टू मेक इट टू नॉकआउट। तो आई
पिछली बार
थिंक
जैसे इन्होंने जब इवन लेविस को नंबर 3 पे खिलाया तो उस बंदे ने खेल के दिया, लेकिन आई थिंक मुझे दो एग्जैक्ट एग्जांपल याद है कि लाइक इवन लेविस 3 पे खेला, 50 बनाई, नेक्स्ट मैच में नहीं खिलाया उसको। तो मुझको लगता है कि मतलब जब आपको मिलता है ना वो प्लेयर कि हाँ आप जैसे तुम कह रहे हो 3 नंबर पे दिक्कत आ रही थी, तो उसके बाद इवन लेविस सर वो क्लिक किया वहां पे, पर आपने अगले गेम में उसको हटा दिया है ना। तो मुझे लगता है कि टीम जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम है एलएसजी की, अभी भी मुझे लगता है बहुत अच्छी टीम है ना। लेफ्ट आर्म स्पिनर है इसमें जो कि नंबर 6 में बॉलिंग कराता है, ठीक है। दीपक हुडा है जो कि ऑफ स्पिन कराता है, ठीक है। माइकल मार्कस स्टोनिस हैं जो कि बिग हिटर हैं और फास्ट बॉलिंग मतलब मीडियम फास्ट करा लेंगे, ठीक है। और मतलब फील्डिंग पूरी गन फील्डिंग टीम है। अमित मिश्रा मतलब सुपर सब के बेस्ट एग्जाम्पल इम्पैक्ट प्लेयर जो भी हम लोग इसमें आएगा रूल आईपीएल में, आई थिंक सबसे ज्यादा एडवांटेज बेनिफिट इसको अमित मिश्रा को मिलेगा इस रूल का मुझे लगता है, क्योंकि वो सबसे तो आप उनसे ओवर कराओ और उनको बोलो चलो भाई आप बैठो ऐसा
हाँ
है ना।
बिल्कुल बिल्कुल
टीम बहुत अच्छी है, मार्क वुड है, रवि बिश्नोई इज अ ग्रेट स्पिनर, तो बहुत अच्छी टीम है, बस ये सिलेक्ट आई थिंक सिलेक्शन नहीं कर पाते इससे, मतलब किसी को कुछ थोड़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे केएल राहुल को नीचे नहीं खेलना, अगर वो तो नीचे जैसे तुमने कहा खेलना शुरू करे तो पूरी बैटिंग ऑर्डर नीचे आ जाती है एंड इट बिकम्स बेटर पूरी की
हाँ,
पूरी।
पर वो पॉसिबल है, हम हो सकता है ऐसा देखें, क्योंकि केएल राहुल जिस तरह से स्ट्रगल किया एज एन ओपनर, अब उसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर वो पहले 2-3 मैचों में, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले मैच में शायद वो ओपनिंग ना करे, वो पहले मैच में तो डेफिनेटली ओपनिंग करेगा, लेकिन अगर उसने फिर से वही खराब फॉर्म दिखाई, क्योंकि हम वनडे में देखते हैं वो फिनिशर का रोल अच्छा करता है, तो नंबर 3-4 पे आके ही कैन बैट जब टीम के थोड़ा स्कोर बन गया हो, तो व्हाई नॉट ट्राई विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन व्हेन यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल। तुम अब जैसे हमने अभी स्टोइनिस की भी बात करी फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा कि मनन वोरा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास और कोई ओपनर नहीं है, स्टोइनिस कैन ओपन फिर या मनन वोरा कैन ओपन, तो आप खिला सकते हो, आपके पास चॉइसेस हैं अवेलेबल टू
बदौनी से
हैव
अगर आप
ओपन।
ओपनिंग आपको टीम में खिलाना ही है उसको, तो मतलब वहां पर आप जगह दे सकते हो उसको थोड़ा सा फील्ड पे, जैसे साहा के साथ होता था, पार्थिव पटेल के साथ होता था, ये लोग प्लेयर इतने नहीं थे कि ताकत से पूरी फील्ड छक्का बक्का मार
बिल्कुल
सके, पर फील्ड डिसीजन का फायदा उठा सकते थे ये लोग, है ना। और
आई वुड अग्री, इनके पास ऑलराउंडर्स भी काफी सारे हैं, ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं गिन रहा था इनके ऑलराउंडर, इनके पास एज गुड एज 10 ऑलराउंडर हैं, बल्कि इनके पास प्योर बैट्समैन सिर्फ एक ही है, मनन वोहरा के नाम पे आई थिंक, अदर देन दैट सब कुछ ऑलराउंडिंग ऑप्शन है, इंक्लूडिंग मेरे ख्याल से आपके, या बदोनी को बोल लो आप, बदोनी बदोनी एक और बैट्समैन है इनके पास, प्योर ऑल ऑल इन ऑल बैट्समैन, अदरवाइज या तो कीपर है ऑलराउंडर है। करण शर्मा है इनके पास, मार्कस चोइनिस है, कृष्णप्पा गौतम है, दीपक हुडा है, काइल मेयर्स है, काइल मेयर्स इज अनदर फिनोमिनल मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज
बिल्कुल
बैट्समैन, कृणाल पांड्या है, डेनियल सैम्स, रोमेरो शेफर्ड की हम बात कर चुके हैं, और दो इन्होंने लोकल इंडियन बॉयज खरीदे हैं, प्रेरक मंकड़ और स्वप्निल सिंह, वो भी ऑलराउंडर्स हैं, तो काफी सारे ऑलराउंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू चूज फ्रॉम। टीम अच्छी लग रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी खराब दिख नहीं रही है, जैसा मैंने बोला अगर केएल राहुल का ये बदोनी की जगह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और केएल राहुल अगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, तो दैट लुक्स लाइक अ रियली फॉर्मिडेबल टॉप, मतलब आप उनके पहले 7 बैट्समैन अगर आप देखो, मैं फिर से एक बार वो लिस्ट, हाँ अगर लेट जस्ट एज्यूम की मनन वोरा ओपन करता है, ठीक है, तो मनन वोरा, क्यूडीके, केएल राहुल, पूरन, हुडा, स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, नाउ मेरे हिसाब से इतनी फॉर्मिडेबल साइड, अगर आपका कृणाल पांड्या नंबर 7 पे बैटिंग करने आ रहा है, और उसके ऊपर स्टोइनिस बैटिंग करने आ रहा है, और उसके ऊपर दीपक हुडा बैटिंग करने आ रहा है, तो रियली गुड फिनिशिंग ऑप्शंस, रियली गुड टॉप ऑर्डर ऑप्शंस, एज गुड एज मुंबई इंडियंस की बैटिंग साइड लगने लग जाएगी ये, फिर अगर ऐसा हो जाए तो जस्ट कीपिंग साइड प्रोबेबली मनन वोरा, क्योंकि वो मैंने एज अ फिलर डक रखे, या फिर वो बदोनी, बट राइट फ्रॉम नंबर 2 टू नंबर 7 इनकी टीम बहुत ही सॉलिड लगने लगेगी फिर।
नहीं, आई एग्री, मुझे लगता है सही बात है। पर इन दोनों टीमों को अगर देखा जाए, माने तो लखनऊ सुपर जायंट्स की 11 बनाई हम लोगों ने, गुजरात टाइटंस की 11 बनाई, तो तुमको क्या लगता है विच टीम डू यू थिंक विल विन बिटवीन द टू टीम्स अगर ये प्लेइंग 11 मैच खेलती हैं तो?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर लास्ट ईयर की भी मेरे से ये बात पूछी जाए ऑन पेपर्स, तो मैं लखनऊ सुपर जायंट्स को ऊपर रैंक करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने ये देखा है कि कप्तानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कैप्टन का माइंड फ्रेम कैसा है, माइंड सेट कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हार्दिक पांड्या का जो माइंड सेट है ना, अलोंग विद आशीष नेहरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े, मतलब क्या बोलना चाहिए, ऐसे
बिल्कुल
मतलब मजेदार मजा करने वाले लोग हैं, दिल फेक लोग हैं, निडर लोग हैं, दबंग लोग हैं, और काफी बड़बोले लोग हैं, लेकिन आई थिंक वही और एटीट्यूड चल रहा है आज की तारीख में, जबकि राहुल जो है वो किसी वजह से परेशान हो जाता है या
और
दब
मुंबई
जाता
में
है
जान
अपनी
गया।
गलती में। हाँ, पर मतलब वही ये लोग थोड़े गौतम गंभीर तो फिनोमिनल कैप्टन रहा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि जब उसकी कैप्टनसी थी केकेआर के अगेंस, या वो आजकल क्या ट्वीट्स कर रहा है उसके बारे में हम बात नहीं करते, बट केएल राहुल थोड़ा सा
इंटेंसिटी तो
अपना,
है ना, लाइक जैसे ऑन द अदर एंड जैसे राहुल और नेहरा है ना, उसके दूसरी तरफ पे आप देखो गंभीर एज अ कोच, लाइक ही इज सुपर इंटेंस, मतलब सुपर इंटेंस, सुपर सीरियस, बहुत मतलब इंटेंसिटी से बात है। अनिल कुंबले थोड़ा सा और डिसिप्लिन, अथॉरिटी, मतलब उस कैंप में आता है गंभीर, गंभीर लाइक इंटेंस कोच जैसे, सीरियस कोच जैसे जिसको आप कह सकते हो ऐसा वहां।
नहीं ऐसा हो भी सकता, और फिर राहुल भी काफी सीरियस रहने वाला प्लेयर है, आई थिंक काफी सोबर या शांत रह के खेलने वाला चेहरे, पर मुझे लगता है कि मजा करना इज रियली इंपॉर्टेंट, अगर आप गेम एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तो आप फंस जाते हो फिर, आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो अपने गेम के बारे में, और दैट लेट्स यू डाउन, तो ऑन पेपर इफ यू रियली आस्क मी, मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थोड़ी सी बैलेंस दिख रही है, बिकॉज जस्ट बिकॉज गुजरात टाइटन्स की एक बैट्समैन शॉर्ट दिखती है, ठीक है, दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज. लेकिन अगर दोनों टीम्स की बॉलिंग कंपेयर करूं तो गुजरात टाइटन्स की बॉलिंग बेटर है, वहां मोहम्मद शमी और राशिद खान जैसे बढ़िया बॉलर हैं, इधर है रवि बिश्नोई लेकिन आवेश खान, मोहसिन खान, लेकिन आप मोहम्मद शमी के फिर मोहम्मद शमी को ऊपर ही रैंक करोगे इन लोगों से, आई बिलीव, या राशिद खान को रवि बिश्नोई से ऊपर ही रैंक करोगे. तो एक टीम की बैटिंग स्ट्रांग है, एक की बॉलिंग स्ट्रांग है. On paper, I think Lucknow Super Giants are a good team, are a much balanced team. लेकिन जिस तरह से Gujarat Titans ने last year plan किया है, तो 50-50 according to me, can't choose a winner right now.
नहीं, मैं भी, I think मुझे लगता है Lucknow की team squad on paper इनका definitely better है. बस team selection चाहिए कि ये लोग match के हिसाब से team खिलाएं, और मतलब और जो अच्छी team है उसको खिलाएं. ये ना करते रहें कि हम chopping करते रहेंगे, change करते रहेंगे. तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस समय पे आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट शुड विन इफ दे प्ले अ मैच बिटवीन गुजरात टाइटंस. बट ये आई थिंक आज के दिन का, आज फाइनली हम लोग पॉडकास्ट की पहली सीरीज खत्म होती है. आईपीएल ऑक्शन 2023 का रिव्यू इज ओवर. सब टीमें रिव्यू कर ली हमने. तो मानिक, अब हमने सारी टीमें रिव्यू कर लिया, राइट? अब तुझे क्या लगता है कि लाइक इन टीमों के स्क्वाड के बाद से विच फोर टीम वुड मेक द प्लेऑफ?
चार टीम तो बताना मुश्किल है. वेरी बहुत ही स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ कि चार टीम चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. लेकिन मैं आपको पांच टीमों के ऐसे नाम दे सकता हूँ जो मुझे लगता है कि प्लेऑफ में जगह बनानी चाहिए, ठीक है. और वो टीम्स अनफॉर्चुनेटली इसमें आरसीबी का नाम नहीं होगा, तो निराश नहीं होना. लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात टाइटन और एलएसजी की टीमों में ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, तो दे शुड मेंटेन द मोमेंटम फ्रॉम लास्ट ईयर. तो वो दोनों तो डेफिनेटली शुड बी हैं, अलोंग विद राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि वो टीम भी बहुत ही फॉर्मिडेबल और बढ़िया दिख रही है. मुंबई इंडियंस को मैं इंक्लूड करना चाहूंगा प्ले ऑफ में, जस्ट बिकॉज उनकी जो फर्स्ट प्लेइंग 11 है बहुत बढ़िया है. कीपिंग असाइड की इंजरीज क्या है और क्या वो सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं, वो सारी बातें मैं साइड में रख के अगर सिर्फ मुंबई इंडियंस की पहली की 11 खिलाड़ी देखता हूँ, तो मैं इस बार बिलीव करता हूँ कि मुंबई इंडियंस को आगे जाना चाहिए. एंड देन आई एम अ बिट डाइसी बिटवीन आपकी दिल्ली की टीम और एसआरएच में, क्योंकि एसआरएच ने भी अच्छी शॉपिंग करी और दिल्ली ने भी अच्छी शॉपिंग करी. तो जो मैं पांचवी टीम का नाम लेना चाह रहा था, एंड इट इज जस्ट बिकॉज मेरी थोड़ी सी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं वहां रहा भी हूँ. आपके लिए शायद दिल्ली होगी, पर मैं एसआरएच के साथ जाऊंगा. तो दोज आर माई फाइव टीम्स दैट आई एम जस्ट नेमिंग अगेन. लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटन्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस एंड एसआरएच. मुंबई इंडियंस का मैं अगेन अभी नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनकी पहले की 11 बहुत अच्छी दिख रही है, वरना मुंबई इंडियंस को आप बॉटम में देख सकते हो. लेकिन या दीज आर माय पिक्स फॉर द प्लेऑफ्स. एंड देन रिमेनिंग फाइव आपकी, मुझे लगता है पंजाब की ऑक्शन अच्छी नहीं रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो पंजाब आप बॉटम में देख सकते हो अलोंग विद चेन्नई. चेन्नई बिल्कुल बॉटम में ना फिनिश करे, लेकिन आई डोंट सी चेन्नई डूइंग रियली वेल इन दिस ईयर आईपीएल एज वेल. तो चेन्नई भी कहीं मिडल में दिख सकती है, इज व्हाट आई बिलीव, अलोंग विद आरसीबी. आरसीबी ने लास्ट ईयर थोड़ी किस्मत ने साथ दे दिया, जो वो जस्ट प्लेऑफ में जगह बना गई और फिर आपको पतिधर ने एक सेंचुरी मार के दे दी, तो वो आगे एलिमिनेटर भी जीत गए. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, तो आई डाउट कि आरसीबी इस बार क्वालिफाई कर पाएगी.
सही है. मैक्सवेल भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, तो देयर इज दैट आल्सो. प्लस फाफ ने फुल टाइम क्रिकेट खेलना भी शुरू बंद कर दिया है, तो ही इज नॉट, जब आप फुल टाइम क्रिकेट नहीं खेल रहे होते इंटरनेशनल, तो थोड़ा सा लेवल तो थोड़ा गिर ही जाता है आई थिंक. बट जो मेरे बात करूँ तो मुझे लगता है कि जैसे लखनऊ सुपर जायंट, गुजरात टाइटन्स, राजस्थान रॉयल्स, अच्छी तीनों टीम है. पिछली बार आई थिंक इन्होंने तीनों ने क्वालिफाई भी किया था, और ये टीम डेफिनेटली क्वालिफाई करनी चाहिए. बाकी दोनों टीमें मुझको लगता है स्क्वाड में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है केके और एसआरएच. मैं दिल्ली को रखना चाह रहा था पहले केकेआर की जगह पे, पर ऋषभ पंत की इंजरी के बाद मुझको लगता है कि उनका स्क्वाड थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा. अगर वो खेलते हैं तो आई थिंक दिल्ली वुड क्वालिफाई बिकॉज दे हैव अ मच बेटर स्क्वाड. और फिर एसआरएच, तो केकेआर और दिल्ली में बीच में मुझे थोड़ा ऐसी है अगर उनकी तो खेलती नहीं, पर मुझे मुंबई लगती नहीं क्वालिफाई करेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक उनकी टीम 14-16 मैच सर्वाइव करेगी जो प्लेइंग 11 तुमने बोला. और जब नहीं करेंगे तब वो हारेंगे. मुझे ऐसा लगता है।
दैट आई एग्री, मतलब ये जो मैंने अभी आपको नाम दिया है मुंबई का, वो सिर्फ इसलिए लिया है कि ऑन पेपर उनके टॉप 11 के बारे में बात करूंगा, और मैं अज्यूम करूंगा कि वो 11 उनके सारे मैच खेले,
अभी जैसे
क्योंकि
कैमरून ग्रीन भी इंजर्ड है, राइट, तो वो भी हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट रहे उसका उस पे भी, तो वो भी मैटर करता है।
लेकिन मतलब आई थिंक ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे क्लोजर टू द आईपीएल पूछोगे, जब सबकी अवेलेबिलिटी पता लग जाएगी, तब मैं इसे बेटर आंसर कर पाऊंगा। अब मुझे अगर उस टाइम पे पता लगे कि बुमराह भी इंजर्ड है, जोफ्रा आर्चर भी सही नहीं कर रहा है, और कैमरून ग्रीन भी नहीं खेल रहा है, तो मैं मुंबई को क्यों रखूंगा प्लेऑफ में। लेकिन अभी तो हमने ऑन पेपर बात करी, तो ऑन पेपर जो टीम मुझे बेटर दिख रही है उसके बेसिस पे मैं मुंबई इंडियंस को ऊपर मान रहा हूँ, क्योंकि भाई फिनोमिनल बैटिंग है, फिनोमिनल बॉलिंग है, इतनी वर्ल्ड चैंपियन टीम है, इतना बड़ा नाम है, और हमेशा अच्छा करती है ये लास्ट ईयर बारिंग लास्ट ईयर, तो देर इज नो रीजन वाई दे शुड नॉट मेक मेक द प्ले ऑफ। और हंगरी होंगे पिछले साल के परफॉर्मेंस के बाद, कि इतना खराब परफॉर्मेंस हुआ है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक अप फॉर दैट। तो मतलब सूर्य कुमार यादव इन फिनोमिनल फॉर्म, ईशान किशन इन फिनोमिनल फॉर्म, तो आपके पास रोहित शर्मा जैसा कैप्टन है, तो मुंबई इंडियंस के पास कोई रीजन नहीं है अनलेस उनके प्लेयर्स अनअवेलेबल हो जाए।
ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस। इफ यू लाइक व्हाट यू सी, प्लीज गिव अस अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फोर टीम्स और फाइव टीम्स दैट शुड क्वालिफाई टू द प्लेऑफ? पुट इट इन द कमेंट्स बिलो, एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट द टू टीम्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, उनका स्क्वाड और उनकी ऑप्शन कैसी रही। बट या, दिस इज आयुष एंड मानिक साइनिंग ऑफ, विल सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।
थैंक यू गाइस, चीयर्स, टेक केयर।